ओम शांति। अभी अभी हमने प्रभा दीदी का क्लास सुना है ना, खुशी का खुराक है ना? खुश है सब, सब खुश है, फिकर से फारिग है? कोई फिकर है? नहीं है तो इस क्लास की भी जरूरत है फिर जो फिकर है ही नहीं है तो फिर सब बेफिकर बादशाह बन गए है ना। कल आप सबको ताज भी मिल गया, बाबा से मिलन भी मना लिया, अदर जो सब चिंताएं थी बाबा को दे दी है ना, तो अभी पूरी तरह निश्चिंत ऐसा है या थोड़ा थोड़ा अभी तक है? थोड़ा बचा के रखा है लेकिन बाबा की इच्छा क्या है, बाबा की उम्मीद बाबा के बच्चों के प्रति क्या है? बाबा हमेशा चाहते हैं मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाए है ना, कोई भी चिंता उनको सताए नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम चिंतित होते रहते हैं, चिंता का जो बोझ है हम लेकर के घूमते रहते हैं। ये कलयुगी दुनिया का संस्कार है, द्वापर युग से ही शुरू हो जाता है ना। द्वापर युग से थोड़ा 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 चिंता करते 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 वो संस्कार इतना गहरा हो जाता है, कोई भी अगर समस्या नहीं उसकी भी चिंता हो जाती है, कोई ऐसा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको भी उसके बारे में भी डर लगने लगता है, अरे बाप रे कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसा है तो चिंता को ढोते 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 कोई मतलब हल्के हो जाते हैं ना, भारीपन लेते 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 एकदम हल्के हो जाते हैं, फिर लगता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ भारीपन है ही नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वो क्योंकि वो संस्कार में नहीं है ना। द्वापर युग से लेकर के वो ढोने का संस्कार है, चिंता करने का संस्कार है, तो एकदम हल्के होने के बाद फिर अजीब सा लगने लगता है, फिर लगता है कि नहीं तो चिंता करो तो थोड़ा नॉर्मल लगता है ना। एक ऐसे एक मछली बेचने वाली महिला थी है ना, तो वो गांव गांव जाकर के मछली बेचती थी, फिर रात हो गया, फिर सब कुछ बेच डाला, सब कुछ हो गया, फिर वापस आ रही थी, जोर से बारिश होना शुरू हो गया। अभी बारिश शुरू हो गया तो फिर अपने गांव तक वो पहुंच नहीं पाई, तो फिर उसकी एक सहेली थी जो जिस गांव में उससे गुजर रही थी, वो एक उसकी एक सहेली थी जो फूल बेचने वाली थी, तो उसके घर चली गई, तो उसने कहा कि मैं आपके घर आज रुक जाऊं क्योंकि बारिश इतने जोर हो रहा है तो मैं अपने गांव तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फूल बेचने वाली सहेली ने कहा कि ठीक है मेरे घर में जगह है, आप आकर के सो जाओ, खा पी लिया, खा पी करके जब सो गई नींद ही नहीं आए उसको, नींद ही नहीं आए, क्यों नींद नहीं आई उसको ना, उसके घर उस घर में फूलों की खुशबू आने लगी, उसकी आदत नहीं है ना, मछली की खुशबू लेने की आदत है, वो बदबू लेने की आदत है, तो वो फूलों की खुशबू के साथ वो सोने वो नींद ही नहीं आए। उसने क्या किया, वो मछली बेचने वाला जो टोकरी था ना वो चेहरे पर डाल करके सो गए, फिर निश्चिंत होकर के उसको नींद आ गया है ना। कहीं बार अपना भी संस्कार ऐसा होता है, बाबा निश्चिंत करता है, कोई भी समस्या हो मुझे दे दो, मुझे दे दो, बाबा के हम दे भी देते हैं, देने के बाद फिर लगता है कि कुछ तो अजीब सा है, कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं, तो फिर से वो चिंता करने लगते हैं है ना। तो इसीलिए बाबा ये चाहते हैं हम बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाए, संस्कारों में ऐसे परिवर्तन आ जाए कि हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति जो है हमारा वो हमेशा बना रहे हैं है ना। तो उसके लिए चिंता रूपी चिता के ऊपर जो बैठते हैं उससे हमें निकलना है। बाबा ये भी कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। चिता समान क्यों कहते हैं बाबा? चिंता चिता समान क्यों है? क्योंकि चिता पर बैठने से पहले, चिता पर बैठना माना मर जाना है ना, तो चिता पर बैठने जितना भारीपन, जितना वो दर्द होता है तो वो महसूस होता है चिंता, चिंता के कारण से। तो इसीलिए चिंता को निकालने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो जरूरत है, जो बाबा बहुत बार मुरलियों में बताए हुए हैं, बाबा कहते हैं कि मैं बैठा हूं ना, बाबा को देने की आदत, बाबा को जैसे प्रभा दीदी ने बताया साथी बनाओ, बाबा को साथी बना करके जो भी हमारी चिंता है बाबा को देते चले, है ना। बाबा को देना माना, बाबा को अपनी चिंताएं देना माना, कोई भी समस्या आए, मान लीजिए आपके आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ समस्या ऐसी आ गई, तो बाबा को वो चिंता देना, वो समस्या देना माना, समस्या देना माना, उसका अर्थ क्या है? बाबा को अर्पण कर देना। ये प्रश्न नहीं उठाना क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसको बेचारी इतना अच्छा व्यक्ति है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, प्रश्न उठाना नहीं है। जो भी हुआ है ठीक है, ड्रामा अनुसार हो गया और बाबा को अर्पण कर लिया, बाबा ये घटना घटी, ये ऐसे बातें हो गई ड्रामा में, अभी मुझे क्या करना है? बाबा से गाइडेंस लेना है। बाबा हमारा सद्गुरु है ना, टीचर्स, बाप टीचर सद्गुरु है, तो सद्गुरु भी है ना बाबा हमारा। तो सद्गुरु के संबंध के साथ जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से क्या मिलता है? श्रीमत मिलती है और गाइडेंस मिलता है, मुझे क्या करना है। तो बाबा को जब हम पूछते हैं, बाबा इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, तो बाबा हमें गाइडेंस देते हैं, बाबा हमें श्रीमत देते हैं। समस्या को अर्पण करना, बाबा को दे देना का मतलब ये नहीं है कि बाबा उस समस्या का समाधान कर लेंगे, समस्या ले लेंगे। मेरे जीव अपने जीवन में समस्या क्यों आई है? हर एक के जीवन में समस्या क्यों आती है? क्यों आती है, किस कारण से आती है? अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है, हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतु करना है। तो अभी बाबा को कहे कि बाबा इस समस्या को ले लो, समस्या को ले लेंगे बाबा, समस्या हुई है अपने कर्मों के कारण से, और मैं बाबा को कहूं बाबा ये समस्या ले लो, बाबा मेरे कर्म में इंटरफियर करेंगे। अगर मेरे कर्म में बाबा इंटरफियर करेंगे तो बाबा को उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाबा सबसे न्यारा है ना, कर्मों की गुयद इसके साइकिल में तो आएगा ही नहीं, सबसे न्यारा है, लेकिन मदद कैसे करेंगे बाबा? बाबा मदद करते हैं हमें गाइड करके, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, बाबा हमें राय देते हैं। अपनी समस्या बाबा ले नहीं ले लेते हैं, पूरा न्यूट्रल कर दे, पूरा समस्याएं खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। समाधान मुझे ही करना है, है ना? वो समस्या का समाधान, कौन सा समाधान करना है, बाबा मुझे गाइड करेंगे। तो बाबा के गाइडेंस के आधार से जब मैं कर्म करती हूं वो समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाबा का टचिंग कुछ मिलता है लेकिन उसमें हम संशय ला लेते हैं कि बाबा पता नहीं, बाबा ये बाबा का श्रीमत है, या मेरा मनमत है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसके कारण से फिर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, कुछ और ही करते हैं, तो समाधान नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा को अर्पण करके बाबा जैसे कहे वैसे हम करते हैं, वो समाधान हो जाता है और फिर हम निश्चिंत बन सकते हैं। और दूसरी बात, निश्चिंत कब हो सकते हैं हम, बेफिकर कब होते हैं, जब कोई भी ऐसे, जैसे कोरोना काल के समय किसको ज्यादा चिंता हुई, किसको ज्यादा समस्या हुई, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत लोगों के नौकरी चला गया था, कमाई का जरिया बंद हो गया था, है ना। तो जिनके बैंक बैलेंस कम था, बैंक बैलेंस जीरो था, तो फिर उनको ज्यादा फिक्र था, ज्यादा चिंता थी, है ना, ज्यादा डर भी था कि पता नहीं कैसे हम आगे चलेंगे, कैसे परिवार को पालेंगे। लेकिन जिसका बैंक बैलेंस भरा हुआ था, काफी कुछ था, तो गुजारा हो सकता था, उनको चिंता नहीं थी, है ना। वो रही स्थूल धन की बात, लेकिन यहां बाबा क्या कहते हैं, किसको निश्चिंतता होगी, कौन बेफिकर रह सकता है, जिसको, जिसके पास जमा का खाता भरपूर है, है ना। हमारा खाता कौन सा है, वो बैंक बैलेंस, वो तो पैसा चाहिए ही गुजारा करने के लिए, जितना अगर पैसा है निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर जमा का खाता जितना भरा हुआ है उतना हम निश्चिंत हो सकते हैं। और जमा का खाता भरने का साधन क्या है, जमा का खाता भरने का साधन क्या है, बाबा की याद। और क्या, कौन कौन सी चीजों को हम जमा करते हैं, जमा के खाते में भरते हैं, कौन सी बातें हैं, दुआएं। सबसे ज्यादा जरूरत है दुआओं का खाता हमारा भरा हुआ होना चाहिए। अगर अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक अनहोनी हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है, जैसे मान लीजिए बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 30 लोग थे, 10 लोग बहुत सुरक्षित रहे, लेकिन 20 लोग शरीर छोड़ दिया, उन 10 लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनका भाग्य अच्छा था, उनका जमा का खाता भरा हुआ था, तो इसलिए वो बच गए, है ना। कर्म का खाता जितना भरा हुआ है, जितना हम सत्कर्म करते चलते हैं, अनेकों की दुआएं हम लेते चलते हैं, तो फिर हमारा जमा का खाता भरता जाएगा। काफी साल पहले की बात है, ज्ञानसरोवर नहीं बना था, पांडव भवन था, केवल पांडव भवन था। उसमें एक भाई, हमारे मधुबन निवासी भाई, हर रोज ट्रक चलाते हैं। वो ट्रक जो अनाज का ट्रक है, रोज सुबह से नीचे से अनाज के बोरी के ट्रक ऊपर लेके आते हैं, और यूजुअली वो सवेरे सवेरे अमृत वेले के समय तुरंत बाद वो लेके आते, ताकि फिर उस समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। एक दिन क्या हो गया, फॉग था, बारिश का समय था, फॉग था, और वो ट्रक पलट करके नीचे गिर गया। पूरा ट्रक के ट्रक, अनाज के बोरियों के सहित, पूरे खड्डे में वो गिर गया। बाद में अगर जाके देखे तो आश्चर्य लगता है कि एकदम खड्डा है, पूरा ट्रक गिर गया है वहां। लेकिन वो भाई साहब, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आया है, और धीरे धीरे उस अंधेरे में धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ करके आए हैं, और रास्ते पर आकर के फिर हाथ किया, कोई मदद के लिए मिले, फिर पांडव भवन आए, फिर जाकर के फिर मदद किया। फिर बाद में जब निवासी जाकर के देखा तो आश्चर्य किया कि ऐसे खड्डे में गिरे लेकिन भाई साहब को एक खरोच भी नहीं आया, वो सुरक्षित रहे, है ना। फिर प्रकाशमणि दादी जी उनको बहुत प्यार किया और दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही, आपका जो दुआओं का खाता है ना बहुत भरा हुआ था, क्योंकि वो आत्मा ऐसे गुप्त सेवाधारी आत्मा है कि निरंतर लगातार चुपचाप हर रोज ट्रक चला रहे हैं, कोई मना कोई मांगनी नहीं, कोई ऐसे बढ़ावा चढ़ावा मना ऐसी बात नहीं, गुप्त होकर के ऐसी सेवा हर रोज कर रहे हैं। उनका जमा का खाता बहुत भरा हुआ था, इसीलिए बच गए ना, है ना। तो इसीलिए जमा का खाता सेवाओं के साथ हमारा भरता जाता है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, चाहे वो स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, जितनी सेवा करके करते 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 दूसरों की से दुआएं हम लेते चलते हैं तो जमा का खाता भरता जाएगा, और जितना हम गुप्त करते जाएंगे उतना जमा का खाता और जल्दी भरेगा, है ना। थोड़ा बहुत किया और 10 लोगों को मैंने बता दिया, जमा का खाता कम हो जाता है, है ना। तो गुप्त रीति से जितना मैं करती जाऊं उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और फिर आइवल के समय ऐसे घटनाएं जब घटती है तो उस समय वो जमा का खाता ही हमको बचा लेता है, है ना। तो जितना हम श्रीमत के अनुसार कर्म करते चलते हैं, जितना गुप्त रीति से सेवा करते चलते हैं, उतना हम हर एक से शुभ भावनाएं शुभकामनाएं मिलता जाएगा, और दुआओं के साथ साथ हमें शुभ भावनाएं शुभकामनाएं भी देते जाना है। जितना हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते जाएंगे, अपकारियों पर भी उपकार करते जाएंगे, उतना हमारा जमा का खाता भरता जाएगा। तो पहला पॉइंट है जमा का खाता भरते जाएंगे फिर बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, और दूसरी बात है निश्चय, है ना। एक बच्चा होता है, बच्चे के चेहरे पर कोई भी चिंता का लकीर नहीं होता, एकदम बेफिक्र होता है वो, है ना। क्यों बेफिक्र होता है, क्यों बेफिक्र होता है वो बच्चा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे माँ बाप है ना मुझे मेरे देखभाल करने के लिए, इसलिए निश्चिंत है, क्योंकि उसको पता है मेरे ऊपर कोई है मेरे देखभाल करने वाले, और न केवल उसको पता है लेकिन उनमें निश्चय है, उनमें विश्वास है कि वो मुझे जब भी कुछ जरूरत होगी मेरे माता पिता है मुझे दे देंगे, या कुछ भी ऐसा समस्या आएगी तो वो उसका समाधान कर लेंगे, पूरी तरह निश्चय है, विश्वास है। और अपने पास कौन है, अपने पास कौन है, स्वयं भगवान हमारे माता पिता बन करके आए हुए हैं, तो हमें और ही निश्चिंत होना चाहिए, और ही निश्चिंत होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हम चिंतित होते हैं, क्योंकि वो संबंध जो है बाबा के साथ, सर्व संबंधों की अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति हम गहराई से अगर करते हैं हम बेफिक्र रह सकते हैं। एक फ्लाइट में, एक एरोप्लेन में एक छोटी सी बच्ची, बहुत सारे लोग थे पैसेंजर्स, और एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची थी, वो भी सफर कर रही थी, उसमें वो अकेली थी, उनके साथ उनके पेरेंट्स सफर नहीं कर रहे थे तो वो अकेली थी, और प्लेन उड़ा, और फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा सा जब तूफान आता है ना तो टर्बुलेंस आ गया, थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया थोड़ा सा, और फिर सारे पैसेंजर्स उस प्लेन में थोड़ा सा घबराने लगे, थोड़ा चिल्लाने लगे, पता नहीं क्या होना हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा, थोड़ा घबराने लगे, तो थोड़े चिल्लाने लगे, थोड़ा मतलब एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन ये बच्ची एकदम शांति से बैठी हुई है, आराम से खिड़की से बाहर देख रही है, आराम से बैठी है, उसके अंदर डर नहीं है, पैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आराम से बैठी हुई है शांति से। तो बाजू में जो भाई बैठे थे तो उन्होंने पूछा, बेटा आपको डर नहीं लग रहा है, इतना तूफान जैसे पूरा जो फ्लाइट है इतना हिल रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है? तो उस बच्ची ने बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए कहा, जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, है ना, तो इसलिए मेरे पापा को पता है कि वो मेरे उसकी उसकी बेटी यहाँ उस फ्लाइट में बैठी है, तो कभी ये फ्लाइट को कुछ नहीं होने वाला है, है ना। तो वो पूरे फ्लाइट का जो इंजन का जो कंट्रोल है वो पायलट के पास है, है ना। तो उसको पता है मेरा पापा पायलट है तो वो कुछ नहीं होने वाला है, और पायलट बहुत सक्षम है, और हमारे पायलट कौन है, हमारा पायलट कौन है, शिव बाबा है। और हमारा फ्लाइट थोड़ा भी डगमगाए ना, हमारे संसार का जो थोड़ा भी डगमगाए, तो हमेशा ये याद रखना कि इस संसार का जो डोर है, इस शिप का जो कंट्रोल है, किसके पास है, शिव बाबा के पास है, है ना। जब ये निश्चय है कि बाबा के पास मेरा डोर है, तो ये कभी भी डूबेगा नहीं, कभी भी कुछ भी होगा नहीं, तो ये निश्चय होना बहुत जरूरी है। और निश्चय को गहरा करने के लिए सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना बहुत जरूरी है। गुलजार दादी एक क्लास यहाँ करा रहे थे ज्ञान सरोवर में, सर्व संबंधों के बारे में करा रहे थे। दादी जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, बाबा क्यों बार बार ये कहते हैं कि मेरे साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक संबंध भी छूट जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वही एक संबंध निमित्त बन जाता है बाबा से दूर होने के लिए। अगर मान लीजिए मैं बाबा के साथ कोई भी एक संबंध अनुभव नहीं करती हूँ, मान लीजिए मैं बाबा के साथ साजन का संबंध नहीं अनुभव होता है मेरे से, वो फीलिंग ही नहीं आता है, अगर वो फीलिंग ही नहीं आता है, वो संबंध अनुभव ही नहीं होता है, तो क्या होगा। बाकी सब संबंध अनुभव होता है, पिता का संबंध, माँ का संबंध, टीचर का संबंध, सद्गुरु का संबंध, सखा का संबंध, सब संबंध अनुभव होता है, लेकिन साजन का संबंध अनुभव नहीं होता है बाबा के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा। वही जो एक संबंध है जो बाबा के साथ अनुभव नहीं किया है, तो क्या होगा, वो संबंध हम इंसान में ढूंढेंगे, लोगों में ढूंढेंगे, तो फिर वो संबंध साजन और सजनी का संबंध इंसान के साथ जोड़ लेंगे और बाबा से बेमुख हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हर संबंध बाबा के साथ जोड़ने की जरूरत है। जितना वो गहराई से अनुभव होगा, निश्चय भी बाबा के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां निश्चय में क्यों मार खाते हैं, बाबा में निश्चय हम जल्दी नहीं, वो क्यों नहीं पैदा होता है, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता, है ना, इंसान दिखाई देता है, तो उस पे विश्वास करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इन आंखों से वो दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अनुभव नहीं होता, इसीलिए वो प्रश्न उठता है, क्या सचमुच बाबा मेरी मदद करेंगे? बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं ठहरी एक छोटी सी आत्मा, बहुत साधारण सी आत्मा, तो क्या भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरी मदद करेंगे? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या सचमुच बाबा मेरी मदद करेंगे? कर ही रहा है। कभी कभी प्रश्न उठता है किसी किसी को, क्या सचमुच बाबा मेरी मदद करेंगे? अगर ये प्रश्न उठता तो बाबा की मदद हमें महसूस नहीं होता। और कई बार हम महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम चाहते हैं मदद इसी रूप से मुझे मिले। बाबा की मदद का रूप कुछ अलग होगा, तो वो हम पहचानते नहीं है, तो इसीलिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी रूप में मुझे मदद की जरूरत है, उस रूप से बाबा मदद नहीं कर रहा है, दूसरे रूप से मदद कर रहा है, तो फिर संशय उठता है कि बाबा पता नहीं मुझे मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अभी बाबा से मैं क्या प्रार्थना करूंगी, बाबा से के मैं क्या मदद मांगूंगी कि बाबा मुझे मेरे कैंसर निकाल दो, या फिर मुझे दर्द कम कर दो, या कुछ ऐसे कर दो? ऐसे मांगेंगे ना, कुछ ऐसे इच्छा रखेंगे बाबा के सामने? तो बाबा का तरीका कुछ अलग हो सकता है। और बाबा का तरीका ये है कि इम्यूनिटी शक्ति, जब रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको जब हम बढ़ाते हैं तो धीरे 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 बीमारी कम होगी, और उसका कोई ड्यूरेशन भी होगा, कुछ समय भी होगा। तुरंत तो वो बीमारी खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आज मुझे पता चला है कि मुझे वो बीमारी हुई है, तो कल वो बीमारी खत्म तो नहीं हो जाएगा, उसका कुछ समय होता है ना, ट्रीटमेंट का समय होता है, हीलिंग का समय होता है। अगर ज्यादा होता है तो एक साल भी हो लग सकता है, डेढ़ साल भी लग सकता है, थोड़ा कम है तो एक दो महीने में भी वो खत्म हो सकता है ना। तो वो जब समय चल रहा होता है, फिर संशय उठता है कि पता नहीं बाबा मेरी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेशेंस नहीं है अपने पास, धीरज नहीं होता है कि फिर संशय उठता है। धीरज ना होने के कारण से संशय उठता है कि पता नहीं बाबा मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में धीरज बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा इसलिए कहते हैं ना, धीरज धर मनवा, धीरज धर, आपके सुख के दिन आने वाले हैं। क्यों समय लगता है ये सारे बीमारी, आत्मा की जो बीमारियां हैं वो खत्म होने के लिए समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना। ये बीमारी आज की बीमारी नहीं है, बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है ना, 63 जन्म पुराना बीमारी है। और जितना बीमारी पुराना है उतना ज्यादा समय लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर पुरुषार्थ करते चलो, फल की इच्छा मत करो, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन हम ये सोचेंगे ना कि कल ही मुझे मिल जाना चाहिए, उसका फल अभी अभी मिल जाना चाहिए, वो नहीं होगा। कोई फल 6 महीने के बाद मिलता है, कोई 1 साल के बाद मिलता है, तो लेकिन पुरुषार्थ करते चलना है। इसीलिए निश्चय, बाबा में निश्चय रख करके पुरुषार्थ करते चले। और दूसरा निश्चय है खुद में निश्चय रखे। बाबा 4 प्रकार के निश्चय बताए हुए हैं ना, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। चारों ही प्रकार के निश्चय अगर अपने में है तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। अपने में निश्चय कैसे बढ़ाएं? जितना हम स्वमान बढ़ाते चले, स्वमान का अभ्यास करते चले, मैं कौन ना। बाबा ने इतना सुंदर स्वमान हर रोज बाबा देते हैं, रोज वो स्वमान अपनाए, स्वीकारे उसको। बाबा अगर कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, अगर मैं सोचूं कि मैं तो कमजोर आत्मा हूं, लेकिन बाबा तो ये वरदान दे रहे हैं, तो कैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई? मैं तो आत्मा कितने कमजोर हूं, मुझे मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, मैं तो आत्मा कमजोर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बन गई, कैसे हो सकती हूं? खुद में अगर संशय है उसको कैसे स्वीकार करेंगे? बाबा ये वरदान दे रहे हैं आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। हम किस आधार से हम उसको स्वीकारें? वर्तमान समय तो कमजोरियां दिख रहा है, बाबा वरदान दे रहे हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, उसको स्वीकारेंगे कैसे? कैसे स्वीकारेंगे? कैसे स्वीकारेंगे? कैसे स्वीकारेंगे? बाबा जो भी वरदान देते हैं आपके संपूर्ण रूप को देखते हुए वरदान देते हैं। बाबा आपको आपकी कमजोरी को नहीं देखते, बाबा आपके परमधाम के जो स्थिति है, परमधाम में जब थे ना आप, उस समय जो स्थिति थी आपकी, उस स्थिति को देख करके बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा आपके पूर्ण रूप को देखते हुए वरदान दे रहे हैं, आपके सतयुगी रूप को देखते हुए वरदान दे रहे हैं, है ना। हर आत्मा अपने संपूर्ण रूप में मास्टर सर्वशक्तिमान है ही है कि नहीं, है ना। परमधाम में जब हम थे, हम सभी संपूर्ण थे और हम मास्टर सर्वशक्तिमान थे, है ना? तो उसको हमें स्वीकारना है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब ओरिजिनल रूप को मैं इमर्ज करती जाऊंगी, उसको मैं अनुभव करती जाऊंगी, अभी वर्तमान समय की जो भी कमजोरियां हैं वो मिटता जाएगा, खत्म होता जाएगा, भस्म होता जाएगा। इसीलिए हमेशा भविष्य के संपूर्ण रूप को देखते हुए अपने अंदर के जो निश्चय है उसको जागृत करना है। बाबा ने हमें चुना है तो फिर कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है ही, है ना। वो निश्चय, बाबा ने मुझे चुना है, मेरे अंदर वो विशेषता है ही है, तो मैं ऐसा जरूर बनूंगी। स्वयं में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ड्रामा में थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क अगर आ जाता है तो फिर फिकर शुरू हो जाएगा, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना है। तो थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क नहीं, ड्रामा के सीन्स जो भी आ रहे हैं, हर सीन में बाबा क्या कहते हैं, हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, है ना। कोई भी अकल्याण नहीं है, भले अभी अभी अकल्याण नजर आ रहा है, लेकिन अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, है ना। अगर कोई एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ भी हो गया, कल्याण नजर आ रहा है, लेकिन उसमें भी अगर ढूंढे एक दो दिन के बाद समझ में आता है इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, है ना। तो हमें ढूंढने की जरूरत है बस, अगर ढूंढेंगे कल्याण दिखाई देता है। इसीलिए कल्याण की दृष्टि को देख, दृष्टि से हम हर सीन को देखते चले तो फिर ड्रामा में निश्चय बढ़ता जाएगा। और चौथी बात, निश्चय ब्राह्मण परिवार में, है ना। ब्राह्मणों को देख करके कभी कभी ये होता है, इतना पुराना ब्राह्मण, इतने पुराने पुराने बी के फिर भी ऐसे कर रहे हैं। उन जब क्वेश्चन मार्क उठता है फिर लगता है कि पता नहीं, तो फिकर होने लगे, थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आता है, उस समय क्या करना है? उस समय भी हम हल्के रहे, बेफिकर रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? उस आत्मा को पुरुषार्थी के रूप में देखें, वो भी एक पुरुषार्थी है ना, यथाशक्ति सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई वर्षों से कोई पुराना या नया नहीं है। अगर 15 साल से ज्ञान में है लेकिन पुरुषार्थ ढीले ढाले चल रहे हैं, कभी क्लास में आए कभी नहीं आए, कभी अमृत वेले उठे कभी नहीं उठे, कभी श्रीमत पे चले कभी नहीं चले, ढीले ढाले चल रहे हैं, तो यथाशक्ति चल रहे हैं, उनको देख करके मैं सोचूं कि इतना पुराना बीके है फिर भी ऐसा चल रहे हैं, हम नए नए क्या प्रेरणा लेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं देखना है, हर एक को पुरुषार्थी के रूप में देखे। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, हर एक को किस रूप से देखना है? डायमंड के रूप में देखना है। हर एक बाबा का चुना हुआ बच्चा है, हर एक में कुछ कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है, हर एक फरिश्ता है। पोस्ट भले उनके अंदर नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है, अवगुण दिखाई दे रहा है, फिर भी हम क्या देखें उनके अंदर? उनके परफेक्ट जो रूप है, उनका संपूर्ण रूप क्या है, वो भी देवता बनने वाले हैं, है ना, वो भी देवता, भले वो पोजिशन क्या भी हो, कौन सा भी पद मिले, लेकिन वो भी देवता बनने वाले हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम उन आत्माओं को देखें, उनके अंदर भी निश्चय रखें, तो हम बेफिकर बन सकते हैं, है ना। तो ये दूसरी बात है, बेफिकर बादशाह बनने के लिए चार बातों में निश्चय पक्का करते चले तो फिर हम बेफिकर बन सकते हैं। और तीसरी बात बहुत जरूरी जो बात है, बाबा ने कहा है, बेफिकर बनने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लो। जो भी मेरा है, मेरापन है ना, मेरापन किन 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 बातों में आता है? मेरापन किन किन बातों में आता है? मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे दौलत है, मेरा मकान है, मेरा जो स्थूल चीज है, जो प्रॉपर्टी है, उसके प्रति वो भावना होता है कि मेरा है। लोग जो है, जो सगे संबंधी है, उनके प्रति वो भावना होता है वो मेरे हैं। और तीसरी बात, मेरा जो शरीर है उसके प्रति भी ज्यादा मेरा शरीर है ना, ये कुछ बातें हैं जो उसके प्रति जो मेरा चलता है, ये मेरा है। हर एक को तेरे में हम कैसे परिवर्तन करेंगे? सबसे पहली बात, जो भी स्थूल चीजें मेरे पास है, चाहे घर है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बाबा कहते हैं कि मुझे अर्पण कर लो, मेरा तेरे में परिवर्तन कर लो। तो बाबा को अर्पण कर लेना है। क्या कहते हैं बाबा? जब बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लो, तो बाबा का भाव ये है, निमित्त बन करके उसको संभालो। बाबा ये नहीं कहते सब कुछ बाबा को दान में दे दो, घर तो चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए तो है, बाबा की सेवा में जितना हम लगा सकते हैं वो लगाएं, लेकिन बाकी जो भी हम संभाल रहे हैं, निमित्त बन करके उसको संभालना है। ये मेरा नहीं है, बाबा का है। बाबा का जो प्रॉपर्टी है मैं संभाल रही हूं, बाबा की अमानत समझ करके संभालते हुए फिर ट्रस्टी बन करके उसको संभाले, फिर वो उसके साथ लगाव नहीं रहेगा। जहां लगाव है वहां फिकर है, मेरापन जहां है वहां फिकर है, बाबा का है तो फिकर नहीं है। है ना, ट्रस्टी बन करके हमें सब कुछ संभालने की जरूरत है। और जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारा संबंध है, संबंधी लोग हैं, परिवार है, उनको हम मेरे को तेरे में परिवर्तन कैसे करेंगे? आपके बच्चे हैं, आपके पति पत्नी हैं, आपके जो भी संबंधी है उसको कैसे हम परिवर्तन करें, मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तन करें? पैदा आपने किया और कहे बाबा आपकी जवाबदारी है, आप देखभाल कर लो। ऐसे तो नहीं होगा ना, देखभाल तो आपको करना ही है, लेकिन कैसे, क्या सोचते हुए संभालना है कि भले बाबा, बाबा ने इस जन्म में मुझे उस बच्चे की मां बनाई है, वो संबंध तो है ही है, उसको कोई नकार नहीं सकते, शारीरिक रूप से तो वो संबंध है ही है, मात पिता और बच्चे का शारीरिक रूप से तो संबंध है ही है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सभी कौन है, भाई भाई हैं, है ना। तो आत्मिक दृष्टि से देखते हुए वो भी एक आत्मा है ना, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इन बच्चों की देखभाल करने के लिए, है ना, जवाबदारी भी निभाना है, ऐसे नकार नहीं सकते बाबा आप देखभाल कर लो, नहीं, बाबा ने जो भी जिम्मेवारियां दी है उसको संभालना है, इसलिए बाबा कहते हैं घर बार को संभालना है, घर बार का त्याग नहीं करना है, संभालना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालना है, हर संबंधों के बीच में बाबा को लेके आओ, है ना, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा है, ये संबंध, जब हर संबंध के बीच में बाबा को जब हम लेके आते हैं, वो फिर अपना, वो मेरापन नहीं होगा, अपनापन तो होगा लेकिन मेरापन जो लगा, वो मोह, वो अटैचमेंट नहीं रहेगा, जो जिम्मेदारी है उनकी देखभाल जो है वो प्यार से हम करेंगे जरूर, लेकिन मोह वहां नहीं रहेगा ना, वो थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाना है, वहां घबराहट नहीं होगा, वहां चिंता नहीं होगी, केवल प्यार होगा, जिम्मेदारी होगी, उसके आधार से हम सब कर्म कर रहे हैं। कहीं लास्ट महीने को कहीं एक जगह पर जाना हुआ, एक युगल, एक परिवार, बहुत पुराना परिवार है जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, करीब 20-25 साल से, दोनों बहुत ही पक्के युगल, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो शादीशुदा, वो दूसरे जगह पर रहते हैं, और एक छोटा बच्चा जो मतलब यंग थे, करीब 25-26 साल का बेटा है, तो वो इतना ज्ञान में नहीं चल रहा है, दोनों पति पत्नी बहुत ज्ञान में पक्के हैं, रोज सुबह अमृत वेले उठते हैं, मुरली क्लास सेंटर पे जाते हैं, रेगुलर धारणा में, लेकिन बच्चा थोड़ा कोऑपरेटिव है लेकिन इतना धारणा में नहीं है। तो वो रात को कहीं गए थे, वो बेटा पार्टी में, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था, फिर मतलब सुबह सुबह जो अपने दोस्त के साथ, जैसे नशे में होते हैं, नशे में वो बाइक चला रहा है सुबह सुबह अमृत वेले के समय, अमृत वेले के बाद 5 बजे हाईवे में जा रहे हैं, और आगे से ट्रक आया, ट्रक में एक ही लाइट चल रहा है, दूसरा लाइट नहीं जल रहा है, तो नशे में उसको पता नहीं चला कि वो ट्रक आ रहा है कि क्या है, तो वो सीधा, वो बाइक जो चला रहा था, सीधा वो ट्रक के सामने जाकर के स्पॉट एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। और जैसे वो सब पुलिस आए, सब कुछ इंक्वायरी हुआ, फिर उनका आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके पता चला कि ये है, फोन नंबर निकाला, तो जब फोन जब किया घर में, दोनों मात पिता सेंटर से होकर के आ गए थे, 8:30 बजे सेंटर से होके आ गए थे, नाश्ता भी कर चुके थे, और वो बिजनेस करते हैं पिताजी, बिजनेस के लिए निकल रहे थे, दुकान के लिए निकल रहे थे, तो फोन आया कि ऐसा ऐसा आपके बच्चे का बॉडी मिला है ऐसा। तो उनकी स्थिति एकदम जैसे नॉर्मल, अगर ज्ञान नहीं होता है तो एकदम शॉक में चिल्लाना शुरू हो जाता है, ये हो जाता है तो ठीक है, लेकिन बॉडी का तैयार करने के लिए बुलाया था उनको। फिर माता जी को भी पता चला कि शायद बॉडी मिला है, लेकिन पूरी क्लियरली पता नहीं चला, एकदम शरीर छोड़ दिया है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये एक्सीडेंट हो गया है। और तो वो सीधा, वो माता ने क्या किया, सीधा बाबा के कमरे में गए और फिर बाबा के सामने बैठे और बाबा को माना, बाबा के साथ बात किया, बाबा अगर ये जो बॉडी मिली है वो मेरा बेटा ही है, बाबा मेरे अंदर इतना शक्ति भर लो ताकि मैं रो नहीं, कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने अगर सीन आएगा तो मेरे अंदर ऐसी शक्ति भर लो कि मैं शक्तिशाली रहूं, पावरफुल रहूं, और इसके आधार से मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं, लौकिक की सेवा कर सकूं। क्या याद आया उनको, सेवा याद आया, बाबा याद आया, बच्चा शरीर छोड़ रहा है, उसका दुख, मतलब दुख तो होगा, हर माँ को दुख तो होगा, लेकिन उस समय भी क्या याद आया उनको, सेवा याद आई। उनकी स्थिति देखो आप, और बाद में पता चला वही उनका बेटा ही है, लेकिन बाद में एक आंसू नहीं आया उनके आंखों से, बाबा को ऐसे इतना निश्चय आत्मा, बाबा के जैसे बहुत ही निकट आत्मा, जो हर चीज बाबा को अर्पण किए हुए, माना मेरे को भी तेरे में परिवर्तन किए हुए, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा शरीर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कि बाबा का बच्चा था, समय आया, ड्रामा अनुसार उस आत्मा को जाना था, ड्रामा की समझ है, कर्मों की गुह्य गति की समझ है, ऐसा नहीं दुख नहीं होता, लेकिन फिर वो गहरा जो दुख है वो नहीं है। ज्ञान के आधार से उन्होंने उस परिस्थिति को भी बहुत सहज रूप से उसको सामना किया और बहुत इजीली वो उसका पार कर लिया है ना। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम बना सकते हैं जब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लेते हैं। केवल बोलने की बात नहीं है, ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसा बनाए कि हर चीज बाबा को जैसे दिया हुआ है, ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय जब हम रख करके चलते हैं तो एकदम बेफिक्र बादशाह बन करके चल सकते हैं, है ना। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए तीन चीजें जो बताई गई, सबसे पहली बात जमा का खाता हमारा इतना भरा हुआ होना चाहिए, है ना? एक बार मुझे याद है दादी जानकी जी का कुछ क्लास चल रहा था नॉन बीकेस के लिए, बाद में इंटरव्यू हो रहा था, पर्सनल जो इंटरव्यू होता है, जर्नलिस्ट एक आई थी, जाने माने जर्नलिस्ट आई थी, तो ऐसे कुछ पूछ रही थी, तो वो एक प्रश्न मुझे याद है, उसने पूछा कि दादी अभी समाज में देख रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसे महिलाओं के खिलाफ बहुत ऐसे अनहोनी घटनाएं हो रही है, तो अगर मान लीजिए अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो, चाहे भले इस जन्म में नहीं, एक पिछले जन्म में ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ हुआ हो या कुछ हो जाता था पहले, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते अगर कोई ऐसे ना लड़का करके आपके साथ कुछ ऐसे बर्ताव कर ले या कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या करते। दादी ने बहुत सुंदर बात कही कि मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर पूरा निश्चय है, मैंने कर्म ऐसा श्रेष्ठ किया है इस जन्म में और पिछले जन्मों में भी इतना श्रेष्ठ कर्म किया है, मेरे साथ ऐसे अनहोनी घटनाएं घटेगी नहीं। देखो है ना, तो अपने जमा के खाते पर इतना निश्चय, अपने कर्मों पर इतना निश्चय, इतना श्रेष्ठ करते चले कि हम ये कभी नहीं डरे कि पता नहीं क्या होने वाला है, कब पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा कर्म इतना श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य इतना ऊंचा है, मेरे साथ ऐसा अनहोनी घटनाएं हो ही नहीं सकता, है ना, जमा का खाता। दूसरी बात है निश्चय, और तीसरी बात है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लो, और समर्पण बुद्धि। हर चीज बाबा को समर्पण जब हम करते हैं तो निश्चय हम के एकदम निश्चिंत हो सकते हैं और बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति। कोई क्वेश्चंस है, प्रश्न है तो 5-10 मिनट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त कर सकते हैं। अंजलि बहन को मिलना है, ओके। बहादुरगढ़ से जो भी भाई बहने आए हैं, क्लास के बाद यहीं बैठे रहेंगे, अंजलि बहन यहाँ आप सभी से मिलेंगे, है ना? ठीक। अगर किसी को प्रश्न पूछना है, 2-4 प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर लेते हैं। माइक दे दीजिए, किसको पूछना है कुछ? आगे आएंगे, यहाँ माइक से माइक पर बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा, या जोर से बोलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है कहते हैं, माइक पे बोलेंगे, माइक यहाँ है भाई, माइक दे दीजिए, आगे आ जाइए थोड़ा।
ओम शांति दीदी।
ओम शांति भाई जी।
यदि फाइनेंशियली किसी रिलेटिव्स को मदद करने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए बीकेस को, क्योंकि जैसे कोरोना काल चला उसमें बहुत ही फाइनेंशियल किसी की सर्विस चली गई या किसी का वो हुआ तो सब मुझे फाइनेंशियली मदद करना है, और फिर एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये पैसा मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसमें हमारी स्थिति क्या रहनी चाहिए, या कभी हमें मैरिज वगैरह में मदद करने की आवश्यकता पड़ती है पैसा सर।
हर एक का अपना पर्सनल डिसीशन होता है
जी।
इसमें बाबा का कोई श्रीमत या मर्यादा ऐसे कुछ है ही नहीं। अगर आपको भावना है, और दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ कैसे है। अगर आपका सगा भाई है
यस,
तो आपको हेल्प करना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो रिलेशनशिप कैसा है आपका, तो आपका डिसीशन होगा वो अगर आपको मदद करना है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए मदद करना चाहिए, लेकिन फिर ये भी बात आती है तो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही।
नहीं, हमारे संकल्प कैसे चलना चाहिए कि हमने दे दिया सो दे दिया, या फिर मुझे
वापस आए ना आए,
उसको तो राइट ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसा बाबा की सीमत है कि हाँ हमें विकारी दुनिया में विकारी रिलेशंस में हमें पैसा नहीं देना है, मदद नहीं करना।
मतलब डिपेंड करेगा अगर वो पैसा किसके लिए यूज हो रहा है ना, वो अगर पैसा लेकर के कोई गलत काम कर रहे हैं उसमें तो नहीं लगाना है, लेकिन बहुत ही जेन्यूनली उनको जरूरत है, सचमुच उनको जरूरत है, कुछ परेशानी है, कुछ हॉस्पिटल्स के बिल भरना है या कुछ ऐसे है, कुछ बहुत ही जरूरी बात है, तो जरूर मदद करना चाहिए। यहाँ आ जाइएगा, जिनको भी पूछना है माइक लेकर के यहाँ पूछ लीजिएगा। हाँ जी।
ओम शांति दीदी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि परिस्थिति जैसे आपने कहा है जैसे एक्सीडेंट की, तो मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा ही हुआ, बेटे का भी ऐसे ही न्यूज आया था, वैसे सही सलामत है सब कुछ, और पोते का भी ऐसे ही न्यूज आया था, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ियां खत्म हो गई। तो लेकिन क्या है, मैंने बाबा जैसे देता है हिम्मत, वो हिम्मत भी रखी और पैसे भी लेके चली, घर में कोई भी नहीं था और टॉवल वगैरह सब कुछ लेके चली, ले जाने वाला भी कोई नहीं था, बाबा को याद किया, थोड़ी देर बैठे, बहू को भी बैठाया, वो भी चलती है, लेकिन हिम्मत रही, लेकिन आंखों से आंसू आ जाते हैं मुझे, ये मेरी वीकनेस है। ऐसे ही पोते के साथ हुआ था, बाबा ने बिल्कुल छतरी रखी होती है बिल्कुल साथ में, कुछ नहीं होया किसी बच्चे को भी,
कोई बात नहीं, अगर
आंखों से बहुत कच्ची हूँ,
कोई बात नहीं, आंसू भी आ गए वो गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन बाबा का कहना ये है कि हिम्मत इतना भरना चाहिए कि ताकि फिर नहीं तो फिर ये होता है ना कि हाय मेरा मेरे बच्चे चले गए, पोते चले गए, मैं किस लिए जिंदा रहना है, मैं भी मर जाऊं, तो ये सब संकल्प आते हैं ना, वो नहीं आना चाहिए।
ऐसा नहीं हुआ दीदी, मैंने सोचा बाबा की छतरी है, बाबा कहता है कुछ नहीं हुआ किसी को, और वास्तव में बिल्कुल ठीक रहे।
हाँ, बहुत आप हिम्मतवान है, शिव शक्ति है, थोड़ा बहुत आंसू आ गया, कोई बात नहीं,
आंसू से ही मैं बोल रहा,
कोई बात नहीं, लेकिन मना ठीक है, फिर आप हिम्मत रख करके फिर उससे भी उभर गए ना आप ऊपर।
ओके, ओम शांति।
बहुत अच्छी बात।
ओम शांति दीदी। दीदी मैं बाबा की बांधेली बच्ची हूँ और मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हो पाता है, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, पर जब मेरे युगल चले जाते हैं ना तब मैं बैठती हूँ योग में, तो क्या ये ठीक है?
ठीक तो नहीं है, लेकिन अमृत वेला बाबा कहते हैं अमृत वेला तो करना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा भी करे वो करना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है। रात को सोने से पहले एक अव्यक्त मुरली पढ़ करके, योग करके, उस संकल्प से अगर सोते हैं तो जरूर आपकी नींद खुल जाएगी अमृत वेले में, और बीच बीच में भी दिन भर में भी बाबा को याद करना चाहिए।
दीदी जी दिन भर तो मैं सारा दिन याद करती हूँ, बस बाबा की कमेंट्री वगैरह सब कुछ, ये सब गीत वगैरह सुनती हूँ, पर गर्मियों में जैसे मेरे युगल 6 बजे आ लेते हैं, मेरा नुमा शाम भी नहीं हो पाता, और सर्दियों में उनका बिजनेस ऐसा है कि सीजनली चलता है, सर्दियों में ज्यादा होता है, तो 9 बजे आते हैं, तो मेरे को रिलैक्स महसूस होता है उस टाइम कि मैं बाबा को छक्के याद करती हूँ, पर गर्मियों में मेरा नमा शाम भी नहीं होता, और जब वे मेरा ना फोन खोलते हैं तो कहते तेरे फोन में बाबा ही बाबा है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बैलेंस तो जरूर रखना चाहिए आपको, क्योंकि बाबा कहते हैं लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना है, तो अगर ना आधा घंटा भी आप उठ पाए बहुत अच्छा है। अमृत
दीदी जी जैसे मान लो मैं लेट के करती हूँ तो नींद आ जाती है, और मैं बैठ के करती हूँ तो हमारे घर में मतलब झगड़ा होता है, ये सोच लो आप, तो मेरे को ये
कुछ ना कुछ युक्ति रचानी पड़ेगी आपको, युक्ति रचानी पड़ेगी।
थैंक यू दीदी।
माइक क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है।
ओम शांति जी। बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ रहे हैं, तो हर संबंध में निराकार रूप में स्थित होना है या बाप दादा के साथ भी किसी किसी संबंध में होना है?
बाप दादा सूक्ष्म वतन में भी आप महसूस कर सकते हैं ना
उसको।
हाँ, सूक्ष्म वतन में भी जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, तो उस रूप से भी आप महसूस कर सकते हैं। और ये जो संबंध है ना, रूप से ज्यादा फीलिंग की बात है। अगर आप मान लीजिए बाबा के साथ माँ का संबंध जोड़ रहे हो, तो माँ शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाप का जो शरीर है वो पुरुष का शरीर है, तो माँ का प्यार कैसे आप महसूस करोगे, है ना? लेकिन ये भी बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा बाबा बाप भी है लेकिन ब्रह्मा माँ भी है, है ना? तो वो फीलिंग की बात है। चाहे वो निराकार शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए आप महसूस करो, या फिर वतन में ब्रह्मा बाबा बाप दादा को इमर्ज करते हुए महसूस करो, वो फीलिंग की बात है। वो संबंध पर्टिकुलर संबंध को के बारे में सोचते हुए फीलिंग अनुभव करना है, है ना? पिता होते तो क्या है, पिता से शक्ति मिलती है, माँ से क्या मिलता है, प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार मिलता है, केयर मिलता है ना? और फिर टीचर से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और सदगुरु से श्रीमत मिलती है, तो अलग अलग बातें, अलग अलग संबंध से क्या क्या मिलता है वो अनुभव करने की बात है। ठीक है।